Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, दिल एक मंदिर के समान है जिसके अंदर सदा हमें सच्चाई और सफाई रखनी चाहिए। उसी प्रकार अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका दिल और भी ज़्यादा स्वस्थ होता जाएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से आपकी रिसर्च की शुरुआत हुई थी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद फर्दर स्टेप्स क्या लिए गए थे।
जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, ये जो CAD रिसर्च प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई
जी,
उसमें दो ग्रुप्स बनाए गए थे। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप था जिसमें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तनाव का प्रबंधन कैसे करें, डाइट हमारी लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन बैलेंस डाइट, कम वसा युक्त अधिक रेशे वाली शाकाहारी संतुलित भोजन, ये बात मेन थी जिसमें। अच्छा। मतलब ये बात थी कि उस साथ साथ हम भोजन क्या खाना है वो तो इम्पोर्टेंट है, किंतु कब खाना और कैसे खाना ये भी इम्पोर्टेंट है।
ओके।
और तीसरी जो बात थी वो थी कि हमारा सैर एक्सरसाइज वो सुबह शाम, सुबह सूर्योदय के बाद अपने स्नान आदि करने के बाद फिर हम 45 मिनट के लगभग सैर करें और उसमें बातें ना करें, साइलेंस में सैर करें। और शाम को आधा घंटा सनसेट के पहले
जी,
डिनर के पहले आधा घंटा सैर करें, ये मेन हमारा एक्सरसाइज का पॉइंट था। तीसरी जो बात थी वो थी प्रॉपर स्लीप कि हम, क्योंकि सोना नींद बहुत आवश्यक है हर इंसान के लिए, और वो नींद जो है हमारी नींद अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये जो एक मैक्सिम है एक कहावत के अनुसार, ऐसा साइंस के हिसाब से भी देखा गया 10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना
जी,
ये जो है नींद को रिकमेंड की गई। और साथ साथ जो भी एडिक्शंस हैं, सिगरेट है, शराब है या कोई और एडिक्शन, कोई और नशा करते हैं, इवन जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स उनमें बहुत कैफीन होती है, उसका भी वो भी नुकसान करते हैं, वो भी ना लें, चाय कॉफ़ी ना लें, तो इस तरह के जितने भी एडिक्शन हैं उन सबसे मुक्ति पाई जाए। ये जो है हमारे, और यूजुअल मेडिकल केयर जो भी उनका ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ का चल रहा है वो चालू रखा जाए।
तो
एक जो मेन जो हमारा ग्रुप था, इंटरवेंशनल ग्रुप कहें या जो हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप कहें, उसमें हम चारों बातें रखी थी। और जो एक कंट्रोल ग्रुप बनाया गया था जिसमें डाइट यही रखी गई थी, एक्सरसाइज भी यही थी, यूजुअल मेडिकल केयर भी थी, नींद भी ऐसे ही बताई गई थी, और एडिक्शन फ्री लाइफ भी बताई गई थी। और साथ साथ स्ट्रेस के बारे में बताया गया था, स्ट्रेस कैसे हमारे हार्ट को, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम कैसे हार्म करती है, और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है उनको नहीं बताया गया था। उनको बताया गया, कहा गया था कि आप जो है ये स्ट्रेस को ठीक करने के लिए आप जो भी कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या कुछ आसन करते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जप तप करते हैं, व्रत करते हैं, हवन करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, आप डू इट मोर, चर्च में जाते हैं और ज़्यादा करेंगे तो जल्दी चिंता गुस्सा मत करें, अपने मन को हल्का रखिए, अपने मन की हर बात शेयर कर लीजिए सोने के पहले, ये उनको कहा गया था। और जब ये प्रोजेक्ट हमने DRDO के साथ मिलकर किया था, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और साथ में DRDO।
अच्छा।
DRDO एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसको बोलते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस। वो इंस्टीट्यूट क्या करता है, उनका ध्यान जो बेसिक रिसर्चेस होती है ना, जो आर्मी पर्सनल के लिए हेल्थ के लिए बनाई जाती है, जैसे उनकी एक तो फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी पर रिसर्च करते हैं वो लोग, हारमोन्स पर रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजी पर रिसर्च करते हैं, एक इंस्टीट्यूट है DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च।
ओके।
इंसान में कितनी जल्दी चिंता गुस्सा जो गलत नेगेटिव जो हमारे जो थिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं उनको वहाँ स्टडी किया जाता है आर्मी पर्सनल में।
ओके।
तो वो एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, तो वहाँ पर ये हमारे साथ कार्य कर रहे थे। साथ साथ तीन और हॉस्पिटल्स थे, एक दिल्ली में था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, साथ GB पंत हॉस्पिटल था, दूसरा जो हॉस्पिटल था वो था अहमदाबाद का बीजे मेडिकल कॉलेज, साथ में उनके साथ यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था, और तीसरा जो हॉस्पिटल था वो था बॉम्बे में ग्रांट मेडिकल कॉलेज, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो तीन हमारे पास तर्शरी कार्डिक सेंटर थे जहाँ हर पेशेंट्स की एंजियोग्राफी होती है और जहाँ पेशेंट्स का हार्ट के पेशेंट्स का इलाज होता है।
ओके।
ये था कि तीनों हॉस्पिटल्स हमें पेशेंट भेजेंगे, हमारे यहाँ भेजेंगे जिनकी एंजियोग्राफी हो जाएगी, और वो बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते, या उनकी बीमारी ऐसी है जो कि मतलब बॉर्डर लाइन है, और या ऐसी डिजीज़ है जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है।
ओके।
तो वो जो या कराना नहीं चाहते हैं, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास भेजे जाएंगे, उनको इन दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे और फिर उसके ऊपर हम देखेंगे इन असर देखेंगे मेडिटेशन का, डाइट का, एक्सरसाइज का, और प्रॉपर नींद का, और एडिक्शन फ्री लाइफ का।
जी,
ये मुख्य हमारा प्रोग्राम था।
ओके।
और इसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को हमने सबमिट कर दिया था, और करने के बाद फिर मैंने माउंट आबू शिफ्ट कर लिया था।
ओके।
ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में शिफ्ट कर लिया, फिर परिवार के साथ मैं यहाँ आ गया, और फिर हमारी मीटिंग्स होती थी मिनिस्ट्री में, हमें कॉल आती थी तो हम लोग जाते थे मीटिंग में मिनिस्ट्री में। मेरे साथ DRDO के साइंटिस्ट होते थे, साथ में मैं होता था, और वहाँ जो है उनके जो डायरेक्टर होते थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट बैठे होते, कुछ योगा वाले बैठे होते थे
जी,
हठ योगा वाले जो थे ना, जो वो बैठे होते थे, और उनमें यही डिस्कस हुआ। पहली मीटिंग में तो डिस्कस हुआ कि डॉक्टर साहब, आपका जो आपने जो खाली राजयोगा मेडिटेशन रखा है, दैट इज़ नॉट इनफ, इसमें आप आसन जोड़िए, प्राणायाम रखिए, 12 आसनों की लिस्ट थी, साथ साथ उन्होंने कहा कि इसमें नेचुरोपैथ भी रखिए, और ये ज़रूरी है क्योंकि इनका रिजल्ट होता है, हमें ब्रह्मा कुमारी का राजयोगा मेडिटेशन पता नहीं क्या होता है। तो हालांकि मैंने उनको समझाया कि राजयोगा मेडिटेशन बहुत सिंपल है, फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ कॉन्शियस। आउटर सेल्फ, आज हमारा जो आउटर सेल्फ है उसमें तीन बातें हैं मुख्य, एक तो बॉडी है, हम अपने आप को जो देखते हैं वो बॉडी के बारे में सोचते रहते हैं, और फिर रोल, हम क्या हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, या जो भी हमारा स्टेटस है, एडवोकेट हैं, या हम घर में हमारा क्या रोल है, माता पिता, पति पत्नी
जी।
वो जो रोल, उस रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर मटेरियल कॉन्शियस, जो हमने एक्वायर किया है, हमारा घर है, जायदाद है, कारें हैं, उसके बारे में हम कॉन्शियस रहते हैं। चौथा रिलीजन कॉन्शियस हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट। तो चारों हमारे आउटर सेल्फ है जो हम एक्वायर करते हैं पैदा होने के बाद
जी,
समाज से एक्वायर करते हैं, राइट। और इसकी बजाय हमें इनर सेल्फ कॉन्शियस अप लाइफ लीड करनी है। इनर सेल्फ कॉन्शियस मतलब जो मैं अंदर में हूँ, जो ट्रूथ है, मतलब उस ट्रूथ को हमें जीना है। ये ट्रूथ नहीं है, ये एक्वायर किया हुआ है, जो हम बचपन से नहीं थे और जाने के बाद भी नहीं रहेंगे।
बिल्कुल।
इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ना बॉडी जाएगी, ना रोल जाएगा, ना कोई मटेरियल हमारे साथ जाएगा, ना रिलीजन जाएगा, राइट। चारों तो यहीं रह जाएंगे, आउटर सेल्फ ही रह जाएगी, जैसे कपड़े हमारे निकाल दे तो ही रहेंगे ना। तो वो ऐसा है, इनर सेल्फ जो मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई सीरियस पेशेंट अगर मर जाता है, हमारे हॉस्पिटल में आता है, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, और पेशेंट के रिलेटिव्स बाहर वेट कर रहे होते हैं
जी,
पेशेंट को बचा नहीं पाते, तो हम बाहर आते हैं, डॉक्टर जब बाहर आता है तो क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव, क्या बोलता है, क्या कहते हैं कि आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, हमने बहुत कोशिश की, ही हैज़ गॉन,
करेक्ट,
ही और शी हैज़ गॉन, वो चले गए, जो आपके थे वो चले गए, बॉडी लेके चाहिए,
बिल्कुल
ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब क्या है फिर हम, वो कौन चला गया, जो आपका था वो चला गया,
करेक्ट,
हम कौन है, क्या निकल गया, क्या चला गया, आत्मा चले गई ना
जी,
आत्मा निकल गई ना। तो ये जो है इनर सेल्फ कॉन्शियस अप्रोच थी। तो ये जब हमने इनको कहा कि ऐसे है, सिंपल सी बात है, और नहीं नहीं इसका हमें कुछ नहीं पता है, राजयोग के बारे में 12 क्वेश्चन लिख के दिए कि आप इसके बारे में बताइए हमें, और ये आसन आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, प्राणायाम इंक्लूड करना पड़ेगा, शवासन इंक्लूड करना पड़ेगा, नेचुरोपैथ रखना पड़ेगा। हमने कहा नथिंग डूइंग, रिसर्च में एक या दो वेरिएबल ही रखे जाते हैं
जी,
जो दोनों दो ग्रुप में डिफरेंट होते हैं, ताकि स्टडी को हम डॉक्यूमेंट कर सकें, तभी हम कर पाएंगे,
करेक्ट।
तो उसने कहा नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, हम आ गए, हमने वापस आ गए। फिर उन्होंने फिर अगले साल फिर मीटिंग बुलाई, फिर अगले साल फिर हमने यही डिस्कस किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके आंसर से संतुष्ट हुए, और हम अच्छा आसन मत रखना कोई भी,
ठीक है,
क्योंकि सभी लोग आसन नहीं कर सकते,
बिल्कुल, और स्पेसिफिकली हार्ट पेशेंट्स के लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो,
डिफिकल्ट हो जाता है, और प्लस हर आदमी आसन नहीं कर सकते, कुछ लोग हिंदू धर्म के, कुछ मुस्लिम धर्म के, कुछ सिख, कुछ ईसाई भी हैं
जी,
क्रिश्चियंस भी होते हैं समाज में, तो सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इजीली ना,
बिल्कुल,
क्योंकि बेसिकली तो स्पिरिचुअलिटी, हम लोग स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्न हार्ट केयर करना चाहते थे।
बिल्कुल,
हम लोग उसमें कुछ और कुछ बात नहीं लेना चाहते थे कि सारे विश्व का हर आदमी इसको यूज़ कर सके। हमारा एम क्या था कि विश्व का हर आदमी जिसके पास भी हार्ट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, इरेस्पेक्टिव एजुकेशन, इरेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लिटरेसी स्टेटस, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, हर आदमी इसको कर सके।
करेक्ट,
राइट। हमारा ये एम था, तो हमने कहा इस तरह का हम चाहते हैं यूजर फ्रेंडली, मतलब एक यूनिक यूजर फ्रेंडली जिसको सब लोग कर सकें, हमारा ये प्लान है करने का।
जी,
कोई कहे मैं तो प्राणायाम, मैं तो हिंदू, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं प्राणायाम नहीं करूँगा।
हाँ।
मैं ये आसन, मैं सूर्य नमस्कार नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँ, तो हम क्या कहेंगे?
बिल्कुल,
राइट। तो इस पर हम नहीं चाहते ना इस कार्य करना, हम बड़ा क्लियर कर चाहते हैं फ्रॉम आउटर सेल्फ इन सेल्फ कॉन्शियस। और बैठने की बात भी नहीं है, कुछ चलते चलते भी कर सकते हैं, हर काम इसमें हर चीज़ एक्यूरेटली कर सकते हैं, कोई अलग से बैठने की आवश्यकता भी नहीं।
बिल्कुल,
चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है। उनको थोड़ा समझ में आया, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप आसन मत कराना, नेचुरोपैथ तो रखना। फिर तीसरी मीटिंग, फिर बाद में मीटिंग पूरी हो गई। फिर इस बीच में क्या हुआ, मुझे खुद को हार्ट की तकलीफ हो गई।
अच्छा,
96 में मुझे नवंबर में, माउंट आबू में था, मैं पहले लॉन टेनिस खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था, जॉगिंग करता था, तो मुझे नवंबर 96 में मुझे खुद तकलीफ हुई, छाती में दर्द हुआ, ईसीजी कराया गया, ईसीजी बहुत ख़राब निकला, फिर एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी में भी आर्टिस नॉर्मल थी, कहीं ब्लॉकेज नहीं था।
ओ।
फिर एक मैं कॉन्फ्रेंस में, इको कॉन्फ्रेंस में मेरे जो, मैं बिकॉज आई एम कार्डियोलॉजिस्ट, मैं जाता था कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ मेरे फ्रेंड ने मुझे देखा, यूएस का फ्रेंड था, डॉक्टर गुप्ता आप तो बहुत आजकल बहुत जो नेचर है ना, जो आपकी हमेशा स्माइलिंग, खुश रहने की, ब्राइट, वो नहीं लग रहे आप, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? मैंने उससे डिस्कस की, तो उसने कहा चलो मैं आपको इको करके देखता हूँ। उसने इको किया तो मेरा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मेरे हार्ट, मेरी हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई थी।
अच्छा,
और ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट होता है ना हार्ट से, जो ब्लड बाहर पंप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा, टू मच प्रेशर।
अच्छा,
ब्लॉकेजेस है, ऑल टाइप ब्लॉक हो गया था। और उसमें मुझे क्या होता था, रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम मुझे धड़कन में, हर धड़कन में दर्द होता था हार्ट में, और हार्ट की बीट इरेगुलर हो जाती थी, अरिदमियाज हो जाते थे, तो एक बार बीट मिस होने लगती थी बहुत तेज़ी से, लगता था अभी चला जाऊँगा। तो ऐसी हालत थी मेरी। तो उन्होंने कहा आपकी तो हालत बहुत ख़राब है, और आपकी हार्ट की पंपिंग भी 90% हो गई है, और अब तो आपको कुछ समय है आपके साथ। मेरे अनुभव में तो यह है कि 2 साल डायग्नोसिस होने के बाद 2 साल से ज़्यादा कोई जीता नहीं इस बीमारी में, जैसी आपकी हालत उसको देखते हुए। तो मैंने कहा यार, मुझे भी पता था एज ए कार्ड, मुझे भी पता था ये बीमारी क्या है, इसका क्या प्रोग्नोसिस है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं, हम वापस आ गए घर में। आने के बाद वापस, फरवरी का महीना था 97, ये मैं अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि राज्यों की क्या शक्ति हो सकती है और कैसे आदमी को अपने अंदर जाना पड़ता है। क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हुआ था कि इससे ये फ़ायदा हो सकता है, मतलब कुछ लोगों में मेडिटेशन में क्या फ़ायदा होता है, कि सचमुच हार्ट की बीमारी ठीक होती, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था प्रैक्टिकली। और मेरे साथ जब हुआ उसका कोई इलाज नहीं था बीमारी का, तो रात के टाइम मैं सो नहीं पाता, जैसे मैंने बताया आपको
जी।
मैं लेटता था, दर्द बढ़ जाता था, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती थी, ठंडी का मौसम था माउंट आबू में, तो मैं ऑक्सीजन लगा लेता था, मेरे कमरे में ऑक्सीजन थी बेडरूम में ही, तो मैं वह लगा लेता, उससे भी फ़ायदा नहीं होता था। फिर मैं जो है बैठ के परमात्मा को याद कर, मेडिटेशन करना शुरू करता, राजयोगा मेडिटेशन करना शुरू करता था। जैसे थोड़ी देर मेडिटेशन करता मेरा दर्द ठीक हो जाता था, हार्ट बीट रेगुलर हो जाती थी। तो मैं ऐसे किया और थोड़ा ऐसे लगा नॉर्मल हो गया, दर्द खत्म हो गया, तो मैं लेट, फिर कोशिश करता लेटने की, और फिर दर्द शुरू हो जाता, फिर हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता, फिर मैं मेडिटेशन करता उठ के बैठ के, और फिर थोड़ी देर में फिर ऐसे ही होता, मैं लेटने की कोशिश करता फिर दर्द शुरू हो जाता, फिर हार्ट बीट रेगुलर हो जाता। ऐसे करते करते जो है, कब रात में सोता था मुझे पता नहीं, 4 बजे फिर उठ जाते थे मेडिटेशन करने के लिए, अब सोया ऐसे 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे सोते होंगे, फिर थोड़ी देर में 4 बजे, आदत थी उठने की बहुत सालों से, 4 बजे फिर आँख खुल जाती थी, फिर मेडिटेशन करते थे। तो ऐसे करते करते जब मैं रेगुलर करता रहा और प्लस मैं डेली लिखता था मुझे ये हार्ट की बीमारी क्यों है, अपने आप से बात करता था, क्योंकि हालांकि मेरे फादर को बीमारी थी।
अच्छा,
यही वाली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो मेरे फादर को 63 की एज में आई, मेरे को 36 की एज में आ गई, यंग एज में आ गई। मैं सोचता था मतलब ये मेरे अंदर बीमारी इतनी जल्दी उम्र में कैसे आ गई। फिर मैं लिखता था कि मैंने बचपन से लेकर ऐसे क्या क्या किया, क्या मेरे अंदर मन में क्या बातें छुपी हुई, इस बात का मुझे ये है। तो मैं लिखता था, एनालाइज करता था, फिर लिख के अपने आप से प्रतिज्ञा करता था, इस आज की मैं सबको माफ़ कर देता हूँ, आज मैं ऐसा कर देता हूँ, आज मैं ऐसा करता हूँ। उसके बाद फिर अगले दिन फिर डेली मैंने मतलब प्रैक्टिस हो गई थी करने की। ऐसे प्रोसेस करते 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 किसी ने सिखाया नहीं था मेरे को ये बात, ये तो अंदर से ही ऐसे फीलिंग होती थी। करते करते मेरे को 2-3 महीने हुए थे करते हुए, मेरे का दर्द ठीक होने लगा, हार्ट बीट रेगुलर होने लगी, मेरा चलना फिरना सहज हो गया।
okay.
और जब फिर सितंबर मास में फिर मैं कॉन्फ्रेंस में जब गया, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी वही हार्ट की, तो फिर वहाँ पर वही डॉक्टर, वही वाले डॉक्टर फिर मिले, तो मेरे को नॉर्मल फीलिंग थी मेरी। तो डॉक्टर को आप तो आप नेचुरल ब्राइट लग रहे हैं, मैंने कहा। तो फिर मेरा हार्ट देखा तो ही वाज सरप्राइज्ड कि आपका हार्ट ठीक कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आपकी जो मसल्स जो इतनी पावर इतनी थिक हो गई थी 21 मिलीमीटर, अभी तो 13 मिलीमीटर हो गई है, पीछे वाली 10 हो गई है, पंपिंग पावर भी नॉर्मल 65% हो गई, अब तो आपका हार्ट बिल्कुल ठीक लग रहा है। कहते कैसा हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, कहते बस ऐसे ही हो गया, पता नहीं कैसे हुआ मुझे पता नहीं। तो मैं अपने घर पर आ गया, घर पर आया तो लेटर आया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कि आपको मीटिंग है। फिर मीटिंग में गए तो मीटिंग में उन्होंने कहा हम आपको ये रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम इसको सेंक्शन करना चाहते हैं, प्रूफ मतलब आपको शुरू करें आप जल्दी से जल्दी, ऐसा हम चाहते हैं, किंतु इसको आप हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप आसन भी मत कराइए, प्राणायाम भी मत कराइए, नेचुरोपैथ भी मत रखिए, अपने स्टाइल से करिए, सिर्फ शवासन जरूर कराइएगा। शवासन समझते हैं
जी।
तो मैंने अंदर से सोचा शवासन, तो शवासन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक एनर्जी वो ख़त्म हो गई, करंट खत्म मतलब डेड हो गया, यहाँ तक फिर डेड हो गया, फिर यहाँ तक डेड हो गया, फिर यहाँ तक डेड हो गया, फिर यहाँ तक डेड हो गया, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में हम करते हैं कि हम मैं आत्मा यहाँ बैठ के सारी बॉडी को एनर्जी पोषित कर रहे हैं।
ओके,
अपोजिट हो गया ना, शवासन इसके राजयोग के अपोजिट हो गया। मैंने उस समय मुझे संकल्प आया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं हम तो नहीं कराएंगे। जो मेरे साथी थे वो कहते डॉक्टर साहब मान जाओ ना, मत करना बाद में, अभी तो आप मान जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं, हम जो सत्यता पे करेंगे, ट्रुथ पे। इसमें तो हम करते हैं कि मैं आत्मा यहाँ हूँ, दोनों भ्रष्टों के मध्य यहाँ ऐसे लगभग 2.5 इंच अंदर, और मैं एनर्जी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं सारे शरीर को एनर्जी 7 ऊर्जाओं से पोषित कर रहे हैं, और अंग इसी हर अंग इसी कारण से, हर कोशिका इसी कारण से चेतन है। तो ऐसा हम फील करते हैं। और शवासन में तो हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक मर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक मर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर हम यहाँ पहुँच लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं, तो ये तो अपोजिट हो गया। तो मैंने कहा हम शवासन तो नहीं कराएंगे सर, इंग्लिश में बोला नेचुरली, एंड देन हम तो शिवासन कराएंगे। कहते शिवासन क्या होता है, तो मैंने कहा शिवासन होता है कि अपने रियलाइज योर सेल्फ एज अ सोल एज अ बींग एंड द रिमेंबर द सुप्रीम बींग शिवा
जी,
गॉड शिवा। तो जब मैंने बोला इसको शिवासन कहते हैं, एंड दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड बाई वॉकिंग ऑल्सो, कुछ भी करते हैं हम वॉक कर सकते हैं, गाड़ी चलाते भी कर सकते हैं, हर काम करते कर सकते हैं। तो इतना खुश हुआ उसका डायरेक्टर कि नहीं डॉक्टर गुप्ता यार वंडरफुल, उसने साइन कर दिया, सेंक्शन हो गया प्रोजेक्ट। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ। तो ये था कि मतलब जो प्रोजेक्ट सेंक्शन होने से पहले मुझे खुद पर्सनल अनुभव हुआ कि राजयोग की क्या पावर है, राजयोग क्या कर सकता है, राजयोग मेडिटेशन से कैसे हील होता है। मेरी कोई आर्टरीज तो ब्लॉक नहीं थी, मेरी तो सिर्फ दीवारें मोटी थी, किंतु इट वाज अ वेरी सीरियस डिजीज, इसका कोई इलाज नहीं था। दुनिया में इसका इलाज है अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन, वो अल्कोहल के इंजेक्शन देते हैं हार्ट की दीवार में, और उससे तो बहुत बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। इसका जो इलाज है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का, वो बहुत ही डिफिकल्ट इलाज था, अल्कोहलिक सेप्टल एब्लेशन, उसके बाद लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होती है। और लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उसके बाद पेसमेकर्स लगवाने पड़ते हैं और बहुत AICDs लगवानी पड़ती हैं और बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है। तो वो सब भी एक प्रैक्टिकल इलाज नहीं था। तो मेरा तो ऐसे इलाज हुआ मेडिटेशन से, जो सेल्फ प्रोसेस मैंने हीलिंग का हुआ और उससे मैं ठीक हो गया और विद इन 3 months ठीक हो गया। तो ये मतलब अपने आप में एक मेरे लिए अनुभव की अथॉरिटी, दैट एक्सपीरियंस बिकेम एन अथॉरिटी इन मी, क्योंकि मैं समझता था कैसे करूँगा, कैसे होगा। तो ये जो है उसके बाद प्रोग्राम पास हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और फिर जो है December 27, 1997 को ये हमारा यहाँ प्रोग्राम लॉन्च हुआ। और उसके बाद मुझे याद आता है सभी सीनियर्स थे उसमें, सभी दादियाँ हमारे जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी रीजनल चीफ, सभी तीनों दादियाँ हमारे थे, विदेश के काफ़ी सारे भाई बहने थे, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोग आए हुए थे
जी।
तीनों जो मैंने बताया कार्डियक इंस्टीट्यूट से, दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई, वहाँ के डायरेक्टर्स आए हुए थे।
ओके।
तो सबके सामने प्रोग्राम लॉन्च हुआ 28 दिसंबर सुबह, जो हमारा स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होता है डेली ओम शांति भवन में होता था माउंट आबू में। तो दादी जो प्रकाश मणि उसमें चीफ थे ब्रह्म कुमारी के
जी,
उन्होंने मुझे इशारा किया कि डॉक्टर गुप्ता आप मुझे मिलिएगा मुरली के बाद। तो मैं दादी से मिलने के लिए बैठ गया और दादी जो है, दादी ने पूछा डॉक्टर गुप्ता अभी तो आपके प्रोग्राम का लॉन्च हो गया, जो रिसर्च है आपकी लॉन्च हो गई, अभी कब शुरू करने वाले हैं? मैंने कहा दादी जी हम 27 फरवरी 1998 को शुरू करेंगे।
अच्छा।
क्योंकि वही डे था जिस दिन मेरे को विजन हुई थी 95 में।
अच्छा।
विजन माना ऐसा कुछ मुझे इंसाइट हुई थी कि ये जो है इस तरह से ये बीमारी ऐसे होती है और इसका ये इलाज हो सकता है अंदर से मेडिटेशन के बाद, मेडिटेशन के दौरान और बाद में
जी।
ये मुझे एक तरह का इंसाइट मुझे अनुभव हुई थी। और तो दादी ने कहा अच्छा 2 महीने बाकी हैं अभी आप। हाँ दादी 2 महीने बाकी। दादी ने कहा अच्छा गुप्ता जी ये बताइए ये हार्ट की बीमारी होती क्यों है, क्यों हार्ट अटैक होते हैं, ब्लॉकेज क्यों होते हैं? तो मैंने बताया दादी जो जल्दीबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, जो बहुत अंदर डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, जो अपनी मन की टेंशन शेयर नहीं करते हैं, वही जो बातें थी सिनिकल बिहेवियर जो हमने पहले भी डिस्कस की, वो सब कारण होते हैं। इस कारण से हार्ट उनको देखने में हार्ट अटैक ज़्यादा मात्रा में होते हैं, कई गुना ज़्यादा होते हैं। अच्छा आपके अंदर है जल्दीबाजी क्या? दादी मेरे अंदर तो जल्दीबाजी तो नहीं है, फिर भी कभी कभी जब पेशेंट सीरियस होता है तो थोड़ा प्रेशर फील करते हैं। अच्छा आप फील करते हैं, तो आपको गुस्सा आता है कभी कभी? दादी ऐसे तो गुस्सा नहीं आता, और कभी कभी वही पेशेंट के ऊपर ही होता है, जब स्टाफ ठीक से हमारी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो पेशेंट की जान जा रही होता है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा ऐसे फिर उदासी के बारे पूछा, बातें शेयर करने के बारे पूछा, दोष निकालने के बारे पूछा, डर के बारे में पूछा, थोड़ा थोड़ा तो बाकी था ना सभी चीज़।
बिल्कुल।
तो दादी से मुझसे पूछ रही
थी कंप्लीट नहीं, एक कंप्लीट होलसम लाइफ नहीं थी,
मतलब हर एक के जैसे होता है जीवन में थोड़ा तो रहता है ना।
बिल्कुल बिल्कुल,
मेरे भी जीवन में से था। अच्छा दादी ने मुझे मतलब थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में थोड़ा गहराई से, जैसे अच्छा खान पान के बारे में भी सुना है इससे भी कुछ नुकसान होता है? दादी जो कभी तला हुआ खाते हैं, पराठा खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं ना, ऐसी चीज़ें खाते, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते, हॉट ड्रिंक्स पीते, स्मोकिंग करते, जो ऐसी चीज़ें खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, उनको ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है, फास्ट फूड्स खाते हैं
जी।
अच्छा आप कभी खाते हैं क्या? अभी मैं तो नहीं खाता हूँ, फिर भी हमारे यहाँ गुरुवार सतगुरुवार का भोग होता है ना, उसमें मिठाई बनती है, कोई ना कोई मिठाई बनती है, कोई प्रसाद बनता है ना, हम कभी कभी वो तो खाते हैं, वो तो। अच्छा खाते हैं आप? मैंने कहा दादी खाते हैं ना, वो तो भगवान का भोग है ना, शिव बाबा का भोग है।
बिल्कुल।
दादी कहती है अच्छा वो पेशेंट भी खा लेंगे ना फिर? वो तो गुरुवार का भोग है तो वो भी खाएंगे। मैंने कहा दादी तो उनको तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको तो डायबिटीज़ होगी, उनको ऐसे प्रॉब्लम होगा, हार्ट की बीमारी, आर्टरी बंद होंगे, तो उनको तो नुकसान करेगा। अच्छा फिर उनको नुकसान करेगा और आप खाते हैं, आप कैसे उनको बोलेंगे?
Okay.
तो मुझे मतलब इससे इतनी मतलब क्या कहें, एक गाइडलाइन मिल गई कि कैसा मुझे मेरा जीवन होना चाहिए। और उससे मुझे और विश्वास बैठा, मैंने एक्यूरेट फॉलो करना शुरू किया, फिर प्रोग्राम शुरू हुआ।
वाओ डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, लेकिन जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि जैसी कथनी वैसी करनी, अगर हम बोलने और करने में समानता लेके आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जिस प्रकार हर ताले की चाबी होती है, उसी प्रकार हर प्रॉब्लम का एक सलूशन भी होता है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक नया नज़रिया अपनाया, उससे वो कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशनल क्वेश्चन बन गए हैं, उसी तरीके से अगर हम भी चाहें तो हम भी ऐसी मिसाल बन सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।